الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में यानी पीर के दिन जो होती है हमारे तीन एसेंशियल्स फॉर मेन के सिलसिले में, तो इसमें हम कुरान मजीद की तफसीर मारफुल कुरान जिल्द नंबर 5 से आजकल पढ़ रहे हैं। सूरह यूसुफ चल रही है मर्दों वाली क्लास में, और ख्वातीन की जो सुबह क्लास होती है तो उसके अंदर सूरह बनी इसराइल चल रही है। इसमें हम जो आखिरी बात कर रहे थे वो ख्वाब से मुताल्लिक थी, क्योंकि सूरह यूसुफ की बिल्कुल इब्तदाई आयात के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस मशहूर व मारूफ ख्वाब का तज़किरा है। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कभी काफिर फासिक आदमी का ख्वाब भी सच्चा हो सकता है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने आपको एक बात कही थी कि इसमें जो हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बुख्त नसर के ख्वाब की ताबीर का तस्किरा किया था, तो इस आजिज को जो है वो उसकी तहकीक करने का मौका नहीं मिला था। ठीक है, तो हमें तो मौका अभी भी नहीं मिला था, लेकिन आज सुबह जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेहरबानी फरमा दी, जैसे कि कमजोरों के ऊपर खुसूसी मेहरबानी हो जाया करती है। तो सुबह जो है ना वो हम जब सूरह बनी इसराइल की तफसीर ख्वातीन को पढ़ाने के लिए उसका मुताला कर रहे थे, तो उसमें जो है वो बुख नसर का जिक्र है, क्योंकि बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से दो बड़े अजाब वो आए। ठीक है, उनमें से जो पहला अजाब था वो था बुख नसर के हाथों। ठीक है, तो अल्लाह ने दिन में डाला कि भाई बुख नसर के ऊपर जरा तहकीक की जाए। तो जब तहकीक करी तो पता चला कि बुख नसर जो था ना, तो ये था तो बाबुल का बादशाह। ठीक है, बाबुल बेबिलोनियन सिविलाइजेशन जो कि इराक में दजला और फरात के दरमियान वाले इलाके के अंदर होती है। तो इसने जब यहूदियों की बनी इसराइल की नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला ने इसमें इसके दिल में बात डाली कि भाई तुम उनके ऊपर हमला करो और उनको यानी ताख्तो ताराज करो। ठीक है, तो इसने जो है वहां पे हमला किया बैतुल मुकद्दस के ऊपर और बिल्कुल फ्लैट कर दिया पूरे के पूरे बैतुल मुकद्दस को। यानी इस सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई जो मस्जिद थी और जो इमारत थी हैकल सुलेमानी वगैरह सबको बिल्कुल जला करके खत्म कर दिया, पिघल गई चीजें वहां पर। और फिर जो है ना ये बड़ी तादाद में 80,000 किताबों में लिखा हुआ है बनी इसराइलियों को वहां से अपना गुलाम बना करके बाबुल लेकर के आ गया। तो उनमें जो है ना वो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। ठीक है, या तो वो बाद में पैदा हुए या पहले से मौजूद थे, जो भी है जाहिर है बनी इसराइल उनकी बात नहीं मानते थे, जब भी तो उनके ऊपर अदाब हुआ। तो अब जब ये उनको लेकर के यहाँ पर आ गया ना सबको, तो ये जो था ये बहुत यानी ताकतवर और बड़ा बादशाह था ना ये बाबुल का, तो ये इसने भी अपने दरबार के अंदर नजूमियों को और क्या कहते हैं जादूगरों वगैरह को रखा हुआ था, जैसे कि उमूमी तौर पर बादशाह रखा करते हैं। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला जो बाद में बादशाह आएगा अजीज मिस्र, तो उसने भी तो इसी तरीके से रखा हुआ था ना। तो ये ना फिर लोगों से अपने उन लोगों से अपने ख्वाबों की ताबीर पूछा करता था। तो उस वक्त बनी इसराइल के अंदर जो दानियाल अलैहिस्सलाम थे ये बड़े बुजुर्ग थे बनी इसराइल के, तो ये ना दानियाल अलैहिस्सलाम से भी फिर इसने पूछना शुरू कर दिया अपने ख्वाब की ताबीर। तो इसकी कुछ ऐसी यानी इसको बहुत ज्यादा ख्वाब आते थे। ये बाइबल के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई, बाइबल की एक बुक है डैनियल के नाम से, डैनियल। ठीक है, तो डैनियल जो है ये वो अंग्रेजी में या उसके अंदर अपनी जो उनकी अरामेक लैंग्वेजेस वगैरह जो है इनकी, तो उसमें ये दानियाल को डैनियल बोलते हैं। तो द बुक ऑफ डैनियल के अंदर जो है ना ये सारी बातें इन लोगों ने लिखी हुई हैं, या जितनी भी इसमें हकीकत है, जितनी इसमें हकीकत है उन्होंने बहुत सारा मस भी कर दिया है। तो ये लिखा हुआ है कि इसको बहुत ज्यादा ख्वाब आते थे, तो इसने ना फिर इसके इसी तरह के ख्वाब का की ताबीर जो है ना दानियाल अलैहिस्सलाम से ली, तो दानियाल अलैहिस्सलाम ने इसको जो ताबीर बताई वो बिल्कुल सही ताबीर थी। गालिबन इसका वो ख्वाब था कि जिसके अंदर इसके कुछ गुनाहों की वजह से है, था तो ये मुशरिक, ठीक है, मुसलमान नहीं हुआ था तो ये मुशरिक, लेकिन इज्जत तो दिन में आ जाती है ना किसी की, अल्लाह वालों की इज्जत आ जाती है। तो इसने जो है ना कोई इस किस्म का ख्वाब देखा कि ये दरिंदों का बादशाह है और परिंदों का बादशाह है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि दानियाल अलैहिस्सलाम ने इसकी ताबीर दी जो कि बिल्कुल वैसे ही पूरी हुई। तो ये 7 साल तक जो है ना अल्लाह ताला ने इसको जो है वो जानवर बना दिया था, ठीक है, कुछ अरसा जो है ये दरिंदा रहा शेर की शक्ल में, तो शेर जो है ना फिर दरिंदों का बादशाह बन गया, कुछ अरसा जो है ये गिद्ध रहा गिद्ध बन करके रहा, तो गिद्ध जो है ना वो परिंदों का बादशाह हो गया, और कुछ अरसा जो है ये बैल बन के रहा, और बैल जो है फिर ये चौपायों का बादशाह बन गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें उन्होंने अपने उसमें रखी हुई हैं, अब हमें कोई इसकी तहकीक मजीद करने की जरूरत भी नहीं है कि कितना उसके अंदर सच है कितना नहीं है, लेकिन बहरहाल तो दानियाल अलैहिस्सलाम ने उसके इस ख्वाब की ये ताबीर बताई थी जो कि पूरी हुई, तो ये दानियाल अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मोतकद बन गया था, और हत्ता के इसने ये तक जो है वो मान लिया था कि सारे खुदाओं में सबसे बड़ा खुदा जो है ना वो वही है जो कि दानियाल अलैहिस्सलाम का खुदा है, ठीक है। शिर्क इसने छोड़ा नहीं था, ये किताबों में लिखा हुआ है बाइबल में कि ये तौबा तायब होकर के मुसलमान तो नहीं हुआ था, लेकिन इतना मोतकद हो गया था कि जो यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जाहिर है दानियाल अलैहिस्सलाम का खुदा से मुराद कौन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, तो उसको जो है वो सबसे बड़ा खुदा जो है इसने मानना शुरू कर दिया था। बहरहाल तो ये सुबह जो है ख्वातीन की क्लास में हमने बताया, तो हम अभी अभी दिल में आया कि आपको भी बता दें क्योंकि बुकनसर का जिक्र इसमें भी था। तो वो काफिर था और काफिर के ख्वाब जो है वो सच्चे हुआ करते थे, बहुत सारे उसके ख्वाब जिनकी ताबीर दानियाल इस्लाम उसको बताया करते थे। अच्छा बहरहाल तो ये टॉपिक मुकम्मल करके हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 22 के ऊपर, 22 सफा जिल्द नंबर 5 मारफुल कुरान, कि ख्वाब हर शख्स से बयान करना दुरुस्त नहीं है, ठीक है, हर ऐरे गैरे नत्थु गैरे से ख्वाब नहीं बयान करना चाहिए। तो मसला लिखते हैं कि आयत काला या बुनैया, ठीक है, ये जो आयत है कि या बुनैया ला तक्सुस रोया का, यही थी ना, ला तक्सुस रोया का अला इख्वती का, ठीक है, तो इसकी तफसीर में फरमाया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब भाइयों के सामने बयान करने से मना फरमाया, इससे मालूम हुआ कि ख्वाब ऐसे शख्स के सामने बयान ना करना चाहिए जो उसका खैर ख्वाह और हमदर्द ना हो, वरना ऐसे शख्स के सामने और ना ऐसे शख्स के सामने जो ताबीर ख्वाब में माहिर ना हो, ठीक है, खैरख्वाह और हमदर्द ना हो, इसका क्या मतलब, भाई जो आपका खैरख्वाह नहीं होता हमदर्द नहीं होता तो आप उससे जाकर के इतनी पर्सनल बात तो नहीं करते ना, ठीक है, तो ये तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं है कि आप गैर खैरख्वाह और गैर हमदर्द शख्स से जाकर के अपना ख्वाब बयान ना करें, भाई कोई भी ऐसा काम क्यों करेगा, नहीं यहां पर ये मुराद नहीं है, बल्कि यहां पर मुराद ये है कि इंसान किसी को अपना खैर जिसको अपना दोस्त बनाता है उसको अपना खैरख्वाह ही समझता है ना, ठीक है, नहीं तुम ऐसे शख्स को खैरख्वाह मत समझो जो के कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा ना उतरता हो, उसको तुम खैरख्वाह समझो ही नहीं, बेशक वो तुम्हारे साथ जो है वो बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है और बड़ा जो है वो कन्फाइड कर रहा है और बड़ा जो है ना वो तुम्हें सपोर्ट करता है, लेकिन भाई अगर वो नेक नहीं है, ठीक है, अगर वो यानी अकलमंद नहीं है, ठीक है, अब वो दुनियावी तौर पर अकलमंद और दीनी तौर पर अकलमंद दोनों चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है, तो उसको तुम दोस्त ही ना बनाओ, पहली बात तो ये है कि उसको तुम दोस्त ही ना बनाओ, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने हमें मना किया है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने हमने मना किया है ना, सोहबत के हमारे भी कितनी हदीसें भी मौजूद हैं और जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म कुरान मजीद में भी मौजूद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअ सादिकीन, सादिकीन के साथ होकर के रहो, ठीक है ना, ये हुक्म है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, कोई मामूली बात है, अल्लाह का हुक्म कि उसको आपने इग्नोर करके रखा हुआ है या कभी उसके ऊपर अमल किया कभी नहीं किया, भाई क्या छोटे बच्चे ने आपको हुक्म दिया था, कोई जो है वो सड़क पे चलते हुए किसी अंकल ने आपको हुक्म दिया था कि चलो भाई कोई बात नहीं, मान लिया तो मान लिया, नहीं माना तो कोई बात नहीं, भाई हमारे परवरदिगार का हुक्म है, हमारे खालिक का, हमारे मालिक का, हमारे राजक का, राइट, जिसके पास सारी की सारी कुदरत है और हम उसके हर लिहाज से जो है वो उसके मोहताज हैं, उसका हुक्म है यार। कुछ तो अपनी अकल से सोचो इस बात को कि किसके हुक्म को ठुकरा रहे हो, किसके हुक्म को इग्नोर कर रहे हो। तो अल्लाह ने जब ये हुक्म दे दिया ना, तो अब जब हम उस हुक्म के ऊपर अमल नहीं करते हैं ना, तो क्या होता है कि कोई ऐसा शख्स, उसको हम दोस्त बना लेते हैं जो कि दोस्ती के काबिल नहीं था, ठीक है ना। अब हम उसको खैरख्वाह समझ रहे हैं, लेकिन वो असल में खैरख्वाह नहीं है, या तो उसके दिल के अंदर कोई बुराई आई हुई है, कोई हसद पैदा हो जाएगा, कोई जो है वो कोई और शर या कोई और जो है वो आपके साथ मजाक करना शुरू हो जाएगा, और कुछ नहीं तो मजाक ही, चलो भाई मजाक के अंदर इसके साथ जरा खिलवाड़ करते हैं, इसके साथ खेल करते हैं, ठीक है। तो आपने बुनियादी गलती करी अल्लाह का हुक्म ठुकरा करके। अल्लाह को के हुक्म को ठुकराना या कम अहमियत देना, ये है ओरिजिनल सिन। ये जो है ना क्रिश्चियंस के अंदर एक होता है ओरिजिनल सिन, नऊज बिल्ला कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम का ओरिजिनल सिन है, और बाकी जो है वो सारा का सारा उसकी, यानी उसको पता नहीं क्या है, उसका उनका उनका अकीदा है इसके ऊपर, ठीक है। हमारा ओरिजिनल सिन क्या होता है, अल्लाह के हुक्म को कम अहमियत देना, बाकी एवरीथिंग एल्स फॉलोज, हर चीज उसके बाद आती है और नेचुरली आती जाती है, उसके बाद फिर हर चीज जो है ना वो फॉलो करती है उसको, ठीक है। तो भाई ऐसे शख्स को तुम दोस्त मत बनाओ, इसकी तशरीह ये है। और दूसरी बात यह है कि जो जो ख्वाब का माहिर ना, उसको क्यों अपना ख्वाब बता रहे हो, लेकिन इसकी तफसीर आगे हजरत ने खुद लिखी हुई है, तो वहां से पढ़ लेते हैं। तो जामे तिर्मिजी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा ख्वाब नबूवत के 40 अज्जा में से एक जुज है, ठीक है ना। ये तहकीक हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि किसी हदीस में 40वां जुज फरमाया, किसी में 46वां जुज फरमाया, किसी में 17वां जुज फरमाया, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर वो वाली हदीस नकल की कि जिसमें 40वां जुज फरमाया, तो फरमाया कि सच्चा ख्वाब नबूवत के 40 अज्जा में से एक जुज है, और ख्वाब मुअल्लक रहता है, सस्पेंडेड रहता है, जैसे कहा ना लटका रहता है अभी, ठीक है, लटका हुआ है, जब तक किसी से बयान ना किया जाए। जब बयान कर दिया गया और सुनने वाले ने कोई ताबीर दे दी, तो ताबीर के मुताबिक वाकई हो जाता है, ठीक है ना। यानी जो ताबीर है ना, ख्वाब जो है वो ताबीर के मुताबिक वाकई हो जाता है, ठीक है। इसलिए चाहिए कि ख्वाब किसी से बयान ना करे बजुज उस शख्स के जो आलिम व आकिल हो, या कम अज कम उसका दोस्त और खैर ख्वाह हो, ठीक है। आलिम और आकिल हो, आलिम और आकिल का मतलब क्या, वही बात कि या तो आलिम से मुराद ये है कि ख्वाब की ताबीर जानने वाला हो, ठीक है ना। और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ऐसे लोग जो कि ख्वाब की ताबीर जानते हैं, ये 1 in a million भी शायद कम हो, ठीक है ना, जिनको अल्लाह ताला ने वहबी तौर पर ये वाली सलाहियत अता फरमाई है। आज के दौर के अंदर सुना था वो जो हजरत, क्या नाम है उनका, जिनका भी इंतकाल हो गया कराची में, जरवली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। तो उनके बारे में लोगों ने बताया कि भाई उनको ख्वाब की ताबीर का इल्म था, अब वो भी दुनिया से गुजर गए भाई, ठीक है। और पता नहीं दूसरे किसी के बारे में तो मैंने सुना नहीं, कभी भी मैंने नहीं सुना कि किसको ख्वाब के बारे में ताबीर का इल्म है, ठीक है। बस वही एक ले दे करके जो है ना, वो हजरत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ही नाम मशाइख लेते हैं, या यूसुफ अलैह सलाम का नाम लेते हैं, और भाई और उसके अलावा होंगे, लेकिन वो ऐसे लोग जो है वो ज्यादातर, यानी कोई मीडिया के ऊपर थोड़ी आते हैं, ऐसे लोग मीडिया पे जो आते हैं उनका तो आपको पता ही होता है कि वो फिर क्या इंटेंशन लेकर के आए हुए होते हैं, तो ऐसे लोग तो वैसे भी छुपे छुपे रहते हैं, तो ऐसा बंदा तो आपको कोई मिलेगा नहीं। तो फिर आलिम से क्या मुराद है, आलिम से ये मुराद यही है कि जो कि इन मसलों से वाकिफ हो कि ख्वाब की ताबीर कितनी अहम चीज है, ठीक है ना। वो यानी कोई कोई इमेच्योर किस्म का और जो है वो नॉन सीरियस किस्म का ऐसा इंसान ना हो, उसको इल्म हो दीनी मसाइल का, उसको इल्म हो आपके जाती मसाइल का, ठीक है, और जो है वो उसको शऊर भी हो, ठीक है, यानी अपनी जुबान के ऊपर काबू भी हो। आकिल, आकिल जो है वो शख्स हो ही नहीं सकता जिसको अपनी जुबान के ऊपर काबू ना हो, ठीक है ना, बेसोचे समझे जो है वो बोल देता हो चीजों को, तो ऐसा शख्स को आकिल होने की डेफिनेशन के अंदर ही नहीं आता। तो ये सारे क्राइटेरियन हैं, चाहे वो बंदा जो है वो असल में ख्वाब का इल्म रखने वाला ना भी हो, या कम अज कम भी बता दिया कि उसका दोस्त और खैर ख्वाह, ठीक है, और दोस्त और खैर ख्वाह सही मायनों में वही हो सकता है कि जो कि मतलब आलिम और आकिल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक बात है ना कि जब बयान कर दिया और सुनने वाले ने कोई ताबीर दे दी तो ताबीर के मुताबिक वाकई हो जाता है। तो अब इस जुमले के ऊपर जरा गौर करें, यानी हदीस मुबारका का ये जुमला है, तो इस पे गौर करें कि ताबीर किसने दी है, गलत ताबीर या बुरी ताबीर, वो तो दूसरे बंदे ने दी है ना, इसने तो नहीं ताबीर दी, कसूर इसका तो नहीं है कि इसने जो है वो बुरी ताबीर दे दी या गलत ताबीर दे दी। लेकिन सजा किसको मिल रही है, सजा तो ख्वाब देखने वाले को मिल रही है ना, सजा तो ख्वाब देखने वाले को मिल रही है, तो क्यों मिल रही है भाई जब इसका कसूर ही कोई नहीं। कसूर तो गलत ताबीर देने वाले का, सजा उसको मिलनी चाहिए थी, इसको क्यों मिल रही है। इसकी वजह भी वही है जो कि अभी थोड़ी देर पहले बयान हुई कि इसने अल्लाह के हुक्म को, इसका ओरिजिनल सिन ये है कि इसने अल्लाह के हुक्म को कम अहमियत दी और इसने किसी ऐसे शख्स के साथ जो है वो दोस्ती यारी रखी जो कि दोस्त बनाने के काबिल नहीं था, ठीक है ना। अब उसके दिल में जो ख्वाब की ताबीर डाली है, गलत ताबीर बुरी ताबीर, वो भी अल्लाह ही की तरफ से है, वो भी अल्लाह ही की तरफ से है जो कि इसके लिए सजा बन रही है, जो कि इसके लिए सजा बन रही है जिसने अल्लाह के हुक्म को ठुकराया था गलत दोस्त बना करके, ठीक है। जिस तरह जब हम किसी नेक इंसान से, किसी साहिब मशवरा, साहिब इल्म और तकवा, ऐसे शख्स से जब हम मशवरा करते हैं ना, ठीक है, तो वो शख्स जो हमें मशवरा दे रहा होता है ना, वो भी अपनी तरफ से नहीं दे रहा होता, हमें बजाहिर लग रहा होता है कि वो बड़ी अपनी अकल और अपनी समझ और अपने इल्म के मुताबिक हमें मशवरा दे रहा है, नहीं, असल में तो उसके दिल में अल्लाह ताला ने बात डाली है जो कि वो हमें आगे बयान कर रहा है। तो जब नेक शख्स से हम मशवरा करते हैं तो वो मशवरा भी अल्लाह ही की तरफ से हमें उसके वास्ते से खाली मिल रहा होता है। उसी तरीके से जब हम किसी बुरे शख्स को अपना कॉन्फिडेंट बनाते हैं और अपना दोस्त बनाते हैं, अपना यार बनाते हैं, तो वो जो हमें बुरे मशवरे दे रहा होता है ना या गलत मशवरे दे रहा होता है ना, वो भी अल्लाह ही की तरफ से होता है, वो भी अल्लाह ही की तरफ से होता है, ठीक है। पहले जो था वो अल्लाह की तरफ से इनाम था, नेकी, अल्लाह के हुक्म को मानने का इनाम, अच्छा मशवरा मिलना, शेख की तरफ से अच्छा मशवरा मिलना, ये अल्लाह की तरफ से इनाम था, और बुरे दोस्त की तरफ से बुरा मशवरा मिलना, ये अल्लाह की तरफ से सजा है, ठीक है। असल हकीकत यही है, अब हम इस हकीकत को समझ जाएं, मान लें तो हमारा फायदा है, नहीं समझें, नहीं माने तो हमारा नुकसान है, किसी और का नुकसान तो नहीं है, ठीक है जी। कोई सवाल हो किसी के पास तो पूछ लीजिए। अच्छा, इसी वजह से ये जो नेक लोग होते हैं ना, इनकी अवेलेबिलिटी कितनी जरूरी है। अब ये देखें, ख्वाब तो भाई आता ही है, आज भी लोगों को ख्वाब आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं बल्कि, ठीक है ना। अब अगर ये ऐसे नेक लोग सोसाइटी में अवेलेबल ही नहीं है कि जिनसे कि आप जो है वो मशवरा कर सकें, अपने ख्वाब जो है वो बयान कर सकें, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है ना। या तो आप अंदर ही अंदर घुलते रहेंगे, घुटते रहेंगे, ठीक है ना, किसी को भी नहीं बयान करना भाई, ठीक है ना। तो फिर वो दूसरा एक मसला, वो जो शैतान है उसने भी वसवसे डालने हैं, मुझे ये ख्वाब आ गया, ओहो इस ख्वाब का क्या मतलब है, इस ख्वाब की वजह, अब यानी खुद ही ताबीर करना शुरू कर देंगे शैतान के वसवसों की बुनियाद पर, ठीक है ना। या ये कि किसी गलत जन बंदे से जाकर के बयान कर देंगे, ठीक है ना, जिसको कि आपने दोस्त बनाया हुआ है, जिसको अपने आपने अपना जो है वो शेख बनाया हुआ है, उससे जाकर के बयान कर देंगे। अगर कोई मुआशरे में आपके जानने वालों में ऐसा बंदा ही अवेलेबल नहीं, तो क्या करेंगे फिर उसके बाद, यही दो काम कर सकते हैं ना, या तो खुद ही ताबीर करेंगे या किसी गलत बंदे से जाके ताबीर करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनको रिजालुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह वाले बंदे, ठीक है ना, जो आपके खैर ख्वाह भी हों, जो इल्म और अकल वाले भी हों, दीज पीपल आर इंडिस्पेंसिबल फॉर अस। इंडिस्पेंसिबल क्या मतलब, नागुजीर, लाबुद्द मिनहू, है ना, एक बाकायदा किताब है, लाबुद्द मिनहू, समथिंग दैट यू कैन नॉट डू अवे विद, जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता, उसको लाबुद्द मिन्हु कहते हैं, इंडिस्पेंसिबल इंग्लिश में और उर्दू में नागुजीर, ठीक है। तो ऐसे लोगों की जो है ना वो हमें ना सिर्फ कदर करनी चाहिए, बल्कि अगर नहीं है अवेलेबल हमारी जिंदगी में, तो हमें अल्लाह से मांगने की जरूरत है, वी नीड दोज पीपल, वी कैन नॉट डू विदाउट दोज पीपल। ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने कोई दे दिया है फिर अल्लाह ताला की नेमत है, उसकी कदर करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। नेमत की कदर क्या होती है? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने ये नेमत हमें अता फरमाई है, और फिर उस नेमत के साथ जो है वो तकाजे उसके पूरे करना। ठीक है, तो वी नीड दोज पीपल, नॉट जस्ट कि जी हमें फतवा बता दें, राइट। खाली मुफ्ती हमें नहीं चाहिए अपने मुआशरे के अंदर, सही है कि जी वो उधर जो है वो askimam.com या फलाने जो है वो क्या कहते हैं दारुल इफ्ता से जो है वो आपने मसलों के फतवे ले लिए। भाई जो अपने डेली रोजमर्रा के ख्वाबों के बारे में भी हमें फतवे चाहिए, तो बहुत सारे लोग जो है पर दारुल इफ्ता के अंदर अपने ख्वाब लिखते रहते हैं। ठीक है ना, दारुल इफ्ता के अंदर जो आपने ख्वाब भेज दिया है, तो दारुल इफ्ता वाले साहब जो है वो तो आपके ख्वाब की जो आपने तहरीर लिखी है खाली उसकी बुनियाद पे आपको बता देंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर उनको पता होगा। तहरीर की बुनियाद पे आपको फतवा देंगे ना आपके ख्वाब के बारे में, आपके जात को तो वो नहीं जानते, या क्या जानते हैं? दारुल उलूम देवबंद का दारुल इफ्ता है, उसको आपने अपना ख्वाब लिख करके भेज दिया कि जी मुझे इसकी ताबीर चाहिए, आपको वो जानते हैं? वो तो सिर्फ आपके ख्वाब की ताबीर जानते हैं, वो तो ख्वाब की तहरीर जानते हैं जो आपने लिख करके भेजी है उनको। ठीक है ना, चाहे कितने ही बड़े मुफ्ती क्यों ना हो, आलिमुल गैब तो नहीं है ना वो। ठीक है ना, तो आपको कौन जानता है, आपके आगे पीछे का किसको पता है? ख्वाब की ताबीर तो इंसान ख्वाब देखने वाले को जाने बगैर बताई भी नहीं जा सकती है। ठीक है ना, तो ये है सिस्टम, ये अल्लाह ताला का सिस्टम है, अल्लाह ताला ने इसकी समझ अता फरमा दे। नीज तिरमिजी और इब्ने माजा में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब तीन किस्म का होता है, एक अल्लाह की तरफ से बशारत, दूसरे नफसानी ख्यालात, तीसरे शैतानी तसव्वुरात। इसलिए जो शख्स कोई ख्वाब देखे और उसे भला मालूम हो तो उसको अगर चाहे लोगों से बयान कर दे, भला ख्वाब है ठीक है ना, तो बयान कर दे, अगर वो यानी इज फीलिंग गुड अबाउट इट, यानी इसमें कोई बुराई नहीं है, लोगों से बयान। लोगों से मुराद क्या है? लाउड स्पीकर ले और जो है वो मस्जिद में ऐलान करना शुरू कर दे, आज मैंने ख्वाब देखा था। लोगों से मुराद ये है कि अपने खैर ख्वाह और जो मिलने जुलने वाले अच्छे लोग हैं, वही आलिम आकिल खैर ख्वाह, उनसे बयान कर दे। ये को थोड़ी कि सड़क पे, अच्छा भी प्लीज हजरत मेरे अंदर ख्वाब सुनते जाइएगा, है ना, सड़क पे खड़े हो गए जो गुजरने वाले, जरा मेरा ख्वाब सुनते जाइएगा। यहाँ पे लोगों से बयान करने का ये मतलब नहीं है, पेडेस्ट्रियंस को जो है वो बयान करना शुरू कर दें, ठीक है ना, बल्कि आलिम आकिल खैर ख्वाह इन लोगों को बयान कर दें। ठीक है, और अगर इसमें कोई बुरी बात नजर आए तो किसी से ना कहे, ठीक है, बल्कि उठकर नमाज पढ़ ले। और सही मुस्लिम की हदीस में यह भी है कि बुरा ख्वाब देखे तो बाएं तरफ 3 मरतबा थूक दे और अल्लाह से इसकी बुराई से पनाह मांगे। ठीक है, पिछली भी किसी क्लास के अंदर बात हो चुकी है कि बाएं तरफ अगर बेगम साहिबा सो रही है ना, तो उनके ऊपर मत थूकना शुरू हो जाइएगा, ठीक है ना, वरना वो बुरे ख्वाब की ताबीर उसी वक्त आपको नजर भी आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर बेगम नहीं भी सोई हुई लेकिन बेगम साहिबा ने कमरे के अंदर सफाई सुथराई और अच्छी सी कारपेट और अच्छा सा फर्नीचर ये सब रखा हुआ है, तो उसके ऊपर भी जाकर के मत थूक दीजिएगा, वरना उसकी भी खाबीर आपको उसी वक्त नहीं भी मिली तो सुबह तक मिल जाएगी। ठीक है, तो थूकने का मतलब जो है ना वो एक्चुअली मुंह से कुछ थूक निकाल करके फेंकना नहीं है, क्योंकि आपका थूक जो है ना वो सीरत क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे ना अभी पिछली क्लास में, कि नबी अलैहिस्सलाम थूक फेंका करते थे ना, तो सहाबा कराम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के थूक को और बलगम को अपने हाथों पे ले लिया करते थे, जमीन पे नहीं गिरने दिया करते थे, और अपने मुंह के ऊपर मल लिया करते थे नबी अलैहिस्सलाम के थूक और बलगम को। लेकिन हमारा थूक और बलगम ऐसा नहीं है कि बेगम साहिबा जो है वो उसको देख करके खुश हो, ठीक है, तो इस वजह से ना बस जैसे थूकने का एक एक एक, एक स्टाइल बना लिया, थू 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 के जैसे अल्फाज मुंह से है ना, आवाज जैसे मुंह से निकाल दी, बस इतना ही काफी है, वरना फिर वो दूसरा मसला हो जाएगा। ठीक है, तो बाएं तरफ जो है वो 3 मरतबा थूक दें और अल्लाह से इसकी बुराई से पनाह मांगे, ये उधर लेटे लेटे, ठीक है ना। अगर नमाज नहीं भी पढ़ पा, नमाज पढ़ने तो बहुत ही जबरदस्त बात, पूरी हदीस के ऊपर भी अमल हो जाएगा, वरना जो है वो कम से कम लेटे ही लेटे है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला से जो है वो ऐसी उर्दू के अंदर दुआ मांग लें और किसी से जिक्र ना करे, ठीक है, तो ये ख्वाब उसको कोई नुकसान ना देगा। ठीक है, वजह यह है कि बाज़ ख्वाब तो शैतानी तसव्वुरात होते हैं, वो इस अमल से दफा हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी ये जो अमल आपने नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के ऊपर अमल कर लिया तो शैतानी तसव्वुरात के रास्ते में ये रुकावट बन जाएगा, ये सुन्नत का अमल। ठीक है, और अगर सच्चा ख्वाब है तो उस अमल के जरिए उसकी बुराई दूर हो जाने की भी उसकी बुराई दूर हो जाने की भी उम्मीद है। ठीक है, यानी जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था कि सच्चे ख्वाब के अंदर जो है ना वो कुछ रेमनेंट्स जो है वो बुराई के मिल जाते हैं, क्योंकि इंसान हम जो है वो नबियों की तरह से पाकीज़ा और मासूम तो नहीं है, कि नबियों के ख्वाब में तो बिल्कुल कोई बुराई शामिल ही नहीं हो सकती, लेकिन हमारे सच्चे ख्वाबों के अंदर भी ऐसी चीजें शामिल हो सकती हैं, तो इस अमल से जो है ना वो वाला पार्ट जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, किसी अच्छा क्या लिखा है आपने, अगर कोई खैर ख्वाह लोग भी अनजाने में कोई रेलिवेंट ताबीर ताबीर कर दें, कोई रेलिवेंट ताबीर कर दें, तो क्या वो भी सच हो जाता है? अगर कोई खैरख्वाह लोग भी अनजाने में कोई रेलेवेंट ताबीर कर दें, रेलेवेंट ताबीर कर दें, तो वो भी सच हो जाती है। ये रेलेवेंट ताबीर तो एक अच्छी बात है, तो उसमें आपको क्या मुश्किल हो रही है कि रेलेवेंट अभी सच हो गई तो अच्छी हो। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं इररेलीवेंट ताबीर, इररेलीवेंट भी यहाँ पे वर्ड सही नहीं होगा, ना रेलिवेंट वर्ड जो है वो मुझे सही समझ में आ रहा है इसके अंदर, बल्कि कोई गलत ताबीर कर दें तो वो भी सच हो जाता है। इधर इस हदीस के मुताबिक तो उन्होंने अगर ताबीर कर दी है अनजाने में, यानी एक सॉर्ट ऑफ लाइक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म का आपका सवाल है, यानी ये पार्ट उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, वो पार्ट इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ठीक है, खैरख्वाह भी हैं और अनजाने में भी, देखिए ये अनजाने का जो लफ्ज है ना, ये खैरख्वाह के साथ ही असल में जुड़ नहीं रहा है। ठीक है, सही, और ये इररेलीवेंट जो है ये भी खैरख्वाह के साथ जुड़ नहीं रहा है। होता है ना वो ब्लॉक्स आपस में कुछ जुड़ने चाहिए, ठीक है ना, थिंग्स शुड फिट टुगेदर, तो वो आपकी तो अल्फाज ही एक दूसरे के साथ फिट नहीं हो रहा है। सही है, तो एक कंफ्यूजिंग किस्म का एक बड़ा सवाल, अजीब सा। अच्छा, क्या ख्वाब जो है बेगम या शौहर के साथ शेयर किया जा सकता है? खवातीन अक्सर बुरे ख्वाब से परेशान हो जाती हैं और शौहर से शेयर करती हैं। ठीक है, तो शौहर से शेयर करना, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो डिपेंड्स ऑन द शोहर। ठीक है, क्योंकि शोहर जो है ना वो अल्लाह ताला ने तो शोहर को बनाया है शेखुल बैत, ठीक है, बा या ता बैत यानी घर, घर का शेख, शोहर को घर का शेख बनाया है। ठीक है, तो शेख के साथ तो शेयर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब कुछ शोहर जो होते हैं वो बेचारे खुद ही अपने आप को डिग्रेड कर देते हैं अपनी हरकतों की वजह से, अपनी जहालत की वजह से, अपनी जो है वो बद अखलाकी की वजह से, कि अल्लाह ताला ने उनको बनाया था शेखुल बैत, लेकिन अब जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि बेगम साहब उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, तो अगर वो ऐसा कोई शौहर है तो फिर ऐसे, तो ऐसे शौहर से तो बेहतर है कि ना ही नहीं बयान करें। ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसे नहीं है बल्कि ठीक है नॉर्मल इंसान है, मतलब बद अखलाक नहीं है, नॉर्मल अखलाक वाले हैं और समझदार हैं, अक्लमंद हैं, संजीदा किस्म के इंसान हैं, तो उनके साथ जो है वो बीवी को शेखुल बैत का स्टेटस उनको डेफिनेटली देना चाहिए और उनके साथ जो है वो बयान कर देना चाहिए। ठीक है ना, हर औरत का जो डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं होता अपने यानी शेखुल बैत से, बैत जिसके के साथ बैत की जाती है, जिसके साथ इस्लाही ताल्लुक बनाया जाता है, उसको शेखुल बैत कहते हैं। ठीक है, तो वास्ता हस्बैंड भी बहुत सारी खवातीन का मशाइख से जो है वो ताल्लुक होता है, तो हस्बैंड को बयान करेंगी तो फिर वो जा करके शेखुल बैत से उसकी ताबीर लेकर के आएंगे ना, या उसके ऊपर जो भी मशवरा लेकर के आएंगे। ठीक है, तो बीवी का शौहर से बयान करने का तो ये तफसीर हो गई। ठीक है, और शौहर का जो है वो बेगम से बयान करना, तो आजकल के हिसाब से तो माशाल्लाह बेगम साहब भी शेखुल बैत होती हैं। ठीक है, तो अगर माशाल्लाह नेक हैं और समझदार हैं और हाइपर किस्म की चीज नहीं है कि बस उन्होंने कुछ सुन लिया और उसके बाद जो है ना बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है ना, आउट ऑफ सब कुछ हो गई, तो फिर जो है वो ऐसी बेगम से भी बयान नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर माशाल्लाह नेक हैं, दीनदार हैं, सपोर्ट करने वाली हैं, और तो उनके साथ भी बयान करने में मुजायका नहीं है, बल्कि एक तरह से जो है वो अच्छी कम्युनिकेशन ही होगी शोहर बीवी के दरमियान और एक दूसरे को, यानी अच्छा मशवरा। बीवियां अल्हम्दुलिल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम सारे जहानों के शेख है ना, और बेगम जो है वो तो यानी इल्म के अंदर भी आयशा सिद्दीक अल्लाह ताला के बराबरी मकाम नहीं उनका, ठीक है ना, उनसे कम मकाम है ना इल्म के अंदर हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला का, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मसला बयान किया सुलह हुदैबिया के मौके वाला, बैत रिजवान वाला, ठीक है। तो कितना अच्छा मशवरा मिल गया बीवी से, है ना, सारा मसला ही हल हो गया उस मशवरे, बीवी के मशवरे से, ठीक है। तो बीवी से मशवरा कर लेना, बीवी को जो है ना वो अपने ऐसी सिचुएशन बता देना, ये कोई हराम नहीं है, लेकिन डिपेंड्स ऑन द बीवी एज वेल, बीवी को भी जरा देख करके मशवरा करना चाहिए उनसे, ठीक है। तो अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद जो है वो हजरत ने एक मसला बयान किया कि ख्वाब की ताबीर, ख्वाब पर मौकूफ रहने का मतलब, ख्वाब की ताबीर ख्वाब पर मौकूफ रहने का, या सॉरी ख्वाब की ताबीर, इस जुमले को मैं सही नहीं पढ़ रहा हूँ, ख्वाब की ताबीर आई थिंक कुछ मिसिंग है इसमें, या तो ताबीर ख्वाब के ऊपर मौकूफ रहने का मतलब क्या है, ठीक है। तफसीर मजहरी में यह बयान फरमाया है कि बास तकदीरी उमूर तकदीर मुबरम यानी कतई नहीं होते बल्कि मुअल्लक होते हैं कि फुना काम हो गया तो ये मुसीबत टल जाएगी, ठीक है। तो जो लोग जो है वो हमारी क्लासेस पहले से लेते आ रहे हैं, तो बहुत अरसा अब तो गुजर गया कि इस टॉपिक के ऊपर बड़ी तफसील से बात हो चुकी है कि तकदीर की जो है ना वो दो दर्जे होते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो तकदीर बनाई, यानी जो पहले से प्री डिटर्मिनेशन ऑफ फेथ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं तकदीर, ठीक है, तो वो दो लेवल्स हैं। एक लेवल जो है ना वो तकदीर मुबरम कहलाता है, के जो के लोहे महफूज के अंदर जैसा लिखा हुआ है वो अटल है, वो अब किसी सूरत जो है ना उसमें तब्दील नहीं होना, ठीक है। और एक दर्जा जो है वो उससे लेसर दर्जा है, वो तकदीर मुअल्लक कहलाता है, ठीक है। तो उस तकदीर मुअल्लक का यहाँ पे हजरत ने यानी बात समझाई है कि मुअल्लक होते हैं तो क्या मतलब, कि फुना काम हो गया तो ये मुसीबत टल जाएगी, और अगर ना हुआ तो पड़ जाएगी, जिसको कजाए मुअल्लक कहा जाता है, या तकदीर मुअल्लक कजाए मुअल्लक एक ही चीज है। ऐसी सूरत में बुरी ताबीर देने से मामला बुरा और अच्छी ताबीर से अच्छा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो तकदीर मुअल्लक की जो चीजें होती हैं ये लिखी हुई, ये किसी चीज पे डिपेंड कर रही होती है, ये सस्पेंडेड होती है। जिस तरह से आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं ऊपर नजर दौड़ाएं तो एक पंखा लगा हुआ होगा ना, तो पंखा जो है ना वो एक हुक से, जो कि छत के अंदर एक हुक है उससे मुअल्लक है, अगर उस हुक को जो है आप तोड़ दें तो पंखा जो है वो नीचे आ जाएगा, अगर उस हुक को जिसके के साथ अगर कोई चेन वेन लगी हुई है पंखे के अंदर, तो उस चेन को अगर आप खींच लें तो पंखा जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो पंखा जो है वो डिपेंडेंट है उस चेन के ऊपर या उस हुक के ऊपर, ठीक है। जो हुक के साथ करोगे वही पंखे के साथ भी होगा। तो ये तकदीर जो होती है ना, ये तकदीर मुअल्लक, इसको इसी वजह से मुअल्लक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इंसान की का रिस्क है, तो भाई रिस्क जो है वो है ना कि भाई नेकी करोगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, गुना करोगे तो रिस्क कम हो जाएगा, तो भाई रिस्क तो अल्लाह ताला की तरफ से मुकद्दर है, जिसके लिए जितना रिस्क है उतना ही मिलेगा, है ना। वो यानी इंसान को मौत नहीं आ सकती जब तक कि उसको सारा का सारा रिस्क ना मिल जाए जो उसके लिए तकदीर में लिखा हुआ है। तो एक तरफ कह रहे हैं कि जी रिस्क जो है वो तकदीर के अंदर लिखा हुआ है और वो मिलके रहेगा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नेकी करोगे तो बढ़ जाएगा और गुना करोगे तो कम हो जाएगा। सो हाउ डू यू, यानी किस तरह आप इन दोनों बातों को समझेंगे, ये तो बजाहिर जो है वो इख्तलाफी बातें होंगी ना, सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें होंगी हदीस के अंदर, ठीक है। तो नहीं, अब इसकी समझ कैसे क्या होगी कि जब बात हो रही है कि जितना रिस्क लिखा हुआ है वो मिल के रहेगा, ठीक है ना, उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जबकि सारा का सारा रिस्क ना मिल जाए, वहां पर तकदीर मुबरम वाले रिस्क की बात हो रही है, ठीक है ना। जितना उधर लिखा हुआ है उतना मिलेगा, उससे ना ज्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा, लेकिन जहां ये बात हो रही है कि नेकी करोगे तो रिस्क बढ़ेगा और गुनाह करोगे तो रिस्क घटेगा, ठीक है ना, वहां पर बात हो रही है तो वो तकदीर मुअल्लक वाले रिस्क की बात हो रही है, जो कि नेकी से बढ़ता है और गुनाह से घट जाता है, ठीक है ना। उसी तरह उम्र का मामला, बहुत सारी चीजें इस तरह से हैं, ठीक है। तो ख्वाब की ताबीर का भी यही मामला है। तो अब जो है ना, जो इसने ख्वाब देखा है, तो जब ये बताता है किसी सही बंदे को, वो इसकी यानी सही बंदा मतलब खैर ख्वाह, जैसे ऊपर आपने सवाल में किया था खैर ख्वाह, ठीक है ना। तो खैर ख्वाह बंदे को बताता है, खैर ख्वाह बंदे के दिल में अल्लाह ताला एक इसकी ताबीर डालते हैं या एक मशवरा डालते हैं। भाई ताबीर तो उसको आएगी तब वो बताएगा ना आपको ताबीर, अपनी तरफ से तो नहीं वो छोड़ देगा कोई ताबीर आप आपके ऊपर, ठीक है ना। वो खैर ख्वाह बंदा है तो उसको भी ये बात पता है कि मैं अपनी तरफ से कोई ताबीर बता दूंगा बगैर इल्म के तो इसके लिए नुकसान हो जाएगा, तो खैर ख्वाह बंदा तो करेगा ही नहीं नुकसान, ठीक है ना। लेकिन मशवरा दे देते हैं, ठीक है ना, जो खैर ख्वाह होते हैं और साहिब इल्म होते हैं वो आपको मशवरा दे देते हैं, वो एग्जैक्ट ताबीर आपको नहीं दे रहे होते, वो आपको मशवरा दे रहे होते हैं कि आप इस ख्वाब का जो है ना वो ये करें, आप किसी को मत बताइएगा, आप जो है वो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें और आप जो है वो गुनाहों से बचते रहें, इस किस्म का मशवरा दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो इसके लिए फायदेमंद बन जाएगी, ठीक है, और वो ख्वाब जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन किसी गैर खैर ख्वाह से या गैर आलिम से आपने बयान कर दिया तो उसने जो भी आपको बता दिया तो वो आपके लिए जो है फिर वो तय हो गया, ठीक है। तो ये जो अमल है ये तकदीर मुअल्लक तक है, लेकिन तकदीर मुबरम के अंदर क्या चीज लिखी हुई है वो ये है कि इस शख्स को ख्वाब आएगा, ये शख्स जो है वो इस ख्वाब को जो है एक अच्छे बंदे से बयान करेगा, वो अच्छा बंदा जो है वो उसको ये वाली ताबीर देगा और इस ताबीर के देने की वजह से इसका जो है वो मामला अच्छा हो जाएगा। ये सब कुछ तकदीर मुबरम में लिखा हुआ है, तकदीर मुबरम में सब कुछ, यानी बयान करना, किससे बयान करेगा, सही से बयान करेगा, गलत से बयान करेगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा, सब कुछ तकदीर मुबरम के अंदर लिखा हुआ, ठीक है ना। जबकि तकदीर मुअल्लक के अंदर ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ, तकदीर मुअल्लक के अंदर जो है ना वो सस्पेंडेड किस्म की कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, जो जो प्रोग्रामिंग करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और कॉन्स्टेंट स्टेटमेंट्स में क्या फर्क होता है, ठीक है। बहरहाल तो फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में बुरी ताबीर देने से मामला बुरा अच्छी ताबीर से अच्छा हो जाता है। इसीलिए तिर्मिजी की हदीस मजकूर में ऐसे शख्स से ख्वाब बयान करने की ममानियत की गई है जो अक्लमंद ना हो या उसका खैर ख्वाह व हमदर्द ना हो, ठीक है। और ये वजह भी हो सकती है कि ख्वाब की कोई बुरी ताबीर सुनकर, यानी एक और वजह बताई, ठीक है, कि ख्वाब को जो है ना बड़ा प्रेशस, यानी हैंडल विद केयर, हैंडल द ख्वाब विद केयर, प्रेशस चीज है ये, तो इसकी एक और वजह क्या बयान करी कि ख्वाब की कोई बुरी ताबीर सुनकर इंसान के दिल में यही ख्याल जमता है कि अब मुझ पर मुसीबत आने वाली है, ठीक है ना। और हदीस में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया अना इंदा ज़न्न अब्दी भी, कि यानी बंदा मेरे मुतालिक जैसा गुमान करता है मैं उसके हक में वैसा ही हो जाता हूँ, वैसे ही हो जाता हूँ, यानी मैं उसके साथ वैसे ही मामला कर देता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान करता है। जब अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबत आने पर यकीन कर बैठा तो इस आदतुल्लाह के मुताबिक उस पर मुसीबत आना जरूरी हो गया, ठीक है ना। एक दफा हमारे हजरत ने बैठे हुए थे कुछ साथियों के साथ, तो फरमाने लगे कि एक लाहौर के किसी यूनिवर्सिटी में ना, जहां से शायद पढ़ते थे यूईटी में, तो वहां पर एक प्रोफेसर था, तो उसका जो आबाई इलाका था ना वहां पे बहुत सांप हुआ करते थे, ठीक है। तो ये शख्स जो है ना वो अपने आबाई इलाके में कभी भी नहीं जाता था इस खौफ के ऊपर के सांप काट लेंगे उसको, ठीक है। एक दफा क्या हुआ कि इसके पास जो है ना उसके यानी वहां के लोग आए और उन्होंने कहा भी हमारे यहाँ इतने करीबी रिश्तेदार में शादी है और तो आप आए हमारे यहाँ शादी अटेंड करने के लिए जरूर से आए। इसने कहा नहीं मैं तो नहीं जाता भाई, वहां पे सांप होते हैं वो मुझे टस लेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप फिक्र ही ना करें, हम आपके साथ साथ जो है ना दो बंदे कर देंगे जो कि बड़े एक्सपर्ट्स हैं सांपों को डील करने में, एक बंदा आपके आगे चलेगा एक बंदा आपके पीछे चलेगा, ठीक है। तो अगर कोई सांप आया ना ये फौरन उसको मार देंगे, ये बहुत एक्सपर्ट है इस मामले में। तो इसके ऊपर वो बंदा तैयार हो गया, तो ये जा रहा था अपने इलाके में, एक बंदा आगे एक बंदा पीछे लाठी लेकर के सांप को मारने के अंदर एक्सपर्ट, लेकिन अल्लाह की तरफ से क्या मामला हुआ कि इसका जो है ना वो अपना पैर ही किसी ऐसी जगह पर पड़ा कि या तो सांप के ऊपर ही इसका पैर पड़ा या किसी सांप के बिल के ऊपर इसका पैर पड़ा और इसको जो है ना वो सांप ने डस लिया और इसकी मौत हो गई। ये वाकया बयान करके हजरत ने फरमाया अल्लाह ताला के साथ जैसा गुमान रखोगे ना वैसे ही होगा, ठीक है। यानी इसने तो शर का गुमान करके रखा हुआ था कि नहीं मुझे सांप डस लेगा, यानी अल्लाह ताला किसी सांप से मुझे डसवाएंगे, भाई क्यों, राइट। यानी इतना भी क्या वहां पे जहां पे आप रहते थे वहां पे क्या इंसानों ने रहना बंद कर दिया सांपों की वजह से, सारी बस्ती आबाद है, सारे लोग जो है वहां पे रह रहे हैं, एहतियाती तदाबीर अपनी जगह पर, लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई जरूर बिन जरूर मुझे सांप ने डसना है। इसको कहते हैं अल्लाह से बुरा गुमान रखना। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी इसमें जहन में आई थी, वो बयान करके फिर आप लोगों के कुछ मैसेजेस हैं वो पढ़ करके क्लास खत्म करते हैं, टाइम हो गया, टाइम तकरीबन हो गया। वो ये कि यही मामला जो है ना, जैसे ख्वाब के बारे में मशवरा करना, ठीक है, तो यही यही जो जो क्या कहते हैं उसूल जो है ना, ये हमारी जिंदगी के दूसरे मामला के अंदर भी होते हैं। ठीक है, कि पहले आप जो है ना अहले इल्म से मशवरा कर लें, खैर ख्वाहों से जो कि अहले इल्म भी हों अहले मामला भी हों उनसे मशवरा कर लें, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ना वो ताबीर, सॉरी, उसके बाद जो है वो इस्तखारा करें। ठीक है, तो जब इंसान मशवरा करता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उस मशवरे के थ्रू एक यानी सिचुएशन को आसान बना देते हैं, खोल देते हैं, और हमें जो है ना वो गलत इस्तखारों से बचा लेते हैं, गलत इस्तखारों से बचा लेते हैं। ठीक है, वरना हमारे यहाँ यानी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर के अंदर इतना ज्यादा इल्म की खराबी है, इतना कम इल्मी है या गलत इल्मी है, और इतना ज्यादा जो है वो नफ्स परस्ती, ठीक है, और बुरे इंसानों के तरफ से जो है वो बुरे यानी आइडियाज और प्रोपेगेंडा वगैरह इतना ज्यादा हमारे ऊपर गालिब है कि हम जो है ना जब मशवरा करे बगैर इस्तखारा करना शुरू कर देते हैं ना, तो हमें ये भी नहीं पता होता कि हम किस चीज के बारे में इस्तखारा कर रहे हैं, क्या वो इस्तखारे के लिए जायज भी है कि नहीं है। इस्तखारा हर चीज के लिए करना को थोड़ी जायज है। जैसे कि क्लास के अंदर चंद दिन पहले भी बात हुई थी, वो फौजी वो जो एक पाकिस्तान के अंदर एक फौजी जवान था, राइट, उसको जो है वो कादियानियों ने कह दिया कि तुम जो है ना वो इस बारे में इस्तखारा कर लो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अल्लाह का नबी है कि नहीं है। उसने जो है वो हामी भर ली और इस मामले में उसने इस्तखारा कर लिया। इस्तखारा करने के ऊपर जो है वो काफिर हो गया, ये इस्तखारा करके काफिर हो गया। भाई इसके इसके बारे में इस्तखारा आप कर रहे हैं, जो कि ईमान और यकीन की बात है कि भाई अल्लाह है कि अल्लाह नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है कि नहीं है, इसके बारे में इस्तखारा करना होता है? नहीं, ठीक है ना, ये तो बंदा ईमान लेकर के आता है बैंक में जॉब के लिए इस्तखारा, ठीक है ना, यानी बैंक में जो जो भी जो जैसे हमारे दारुल उलूम कराची वाले मशायख हैं उनके नजदीक बैंक की हर जॉब जो होती है वो हराम नहीं होती, लेकिन जो हराम वाली जॉब है इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन को लिखने वाली इंटरेस्ट, तो उसके लिए आप इस्तखारा कर रहे हैं। उसी तरीके से तलाक के लिए इस्तखारा कर रहे हैं, है ना, कभी बीवी जो है वो अपने शौहर से तलाक ले या शौहर जो है बीवी को तलाक दे, उसके लिए इस्तखारा कर रहे हैं। भाई तलाक देना जो है वो अबगदुल क्या है वो हदीस के अल्फाज, यानी जो अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा मबगूज हलाल चीज है ना, तलाक वो है, हलाल चीजों में सबसे ज्यादा मबगूज जो है वो तलाक है। अब तलाक के लिए इस्तखारा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो भाई तलाक ठीक है जायज तो है, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक कोई पसंदीदा अमल तो नहीं है ना। तो भाई ये मशवरे के मामला होते हैं, मशवरे के मामला, मशवरा करके पहले तय करें कि इस्तखारा करना भी है कि नहीं करना है, उसके बाद जाकर के इस्तखारा करें, ठीक है, वरना आजकल तो मामला ये है कि हर बंदा ही जो है ना वो अल्लाह का वली अपने आप को समझ रहा है। बहुत और भी बहुत सारी मिसालें आपको दे सकते हैं उसके ऊपर, तो फिर वो डायरेक्ट अल्लाह है, अल्लाह 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 अल्लाह, तो भाई फिर अबू जाल भी अल्लाह अल्लाह, राइट, और जो है वो यहूदी वो भी अल्लाह अल्लाह, और आज का हर मुसलमान हो या काफिर हो वो भी अल्लाह अल्लाह, तो बीच में रसूलुल्लाह किधर चले गए? रसूलुल्लाह को इसीलिए अल्लाह ताला ने बीच में डाला कि भाई मैं जो चाहता हूँ मैं जो नहीं चाहता ये तो तुम्हें रसूलुल्लाह बताएंगे, ठीक है ना, वरना फिर तो मेरे और तुम्हारे दरमियान जो है वो शैतान मौजूद है, ऊपर शैतान तुम्हें बताएगा कि क्या तुम्हें करना चाहिए क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कोई सवाल है किसी? अच्छा ये सॉरी, इन्होंने कुछ लिखा हुआ था कि अगर शौहर से बयान कर दिया और शौहर ने जली कटी ताबीर बता दी तो उसका असर जायल हो सकता है। जली कटी ताबीर बता दी यानी जले कटे हुए थे और उन्होंने उस इन्फ्लुएंस में आपको ताबीर बता दी, तो अब उसका असर जायल हो सकता है। ये ऐसे ही के अनजाने में खैरख्वाह ने गलत ताबीर बता दी, भाई जो जला कटा होता है ना फिर वो खैरख्वाह नहीं होता, वो उस सिचुएशन में जिस वक्त वो जला कटा है तो वो फिर खैरख्वाह नहीं होता, ठीक है ना, वो फिर यानी उस एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग वो फिर बदख्वाह बन जाता है वो बंदा, ठीक है। मतलब शोहर वैसे तो खैर ख्वाह है, लेकिन लाइल्मी या गुस्से की वजह से गलत बोल दिया, ठीक है। तो खैर ख्वाही कभी फिर वो फेजेस होते हैं, कुछ लोग हैं वो अभी खैर ख्वाह हैं, कल खैर ख्वाह नहीं होंगे, फिर परसों खैर ख्वाह हो जाएंगे, फिर तरसों खैर ख्वाह नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ख्वाब की तहबीर जो है ना, वो उस फेज में उनसे उनको यानी ख्वाब उस वक्त बयान करें जिस वक्त वो खैर ख्वाही मोड में हो, ठीक है ना। और जिस वक्त वो जले कटे कले कटे मोड में हो तो वो समझेंगे ये इस वक्त सही लिए टाइम नहीं है, ठीक है ना। ये अपने मामला ना बयान करने का टाइम है, ठीक है। इतना तो शऊर इंसान को होना चाहिए ना कि अगला बंदा जो है वो किस मोड में है उसके साथ, ठीक है। कोई और सवाल है? अच्छा, असर जायल कैसे हो सकता है भाई? उसके लिए तो अल्लाह ताला से कुछ माफी मांगे, दुआएं करें, ठीक है। और क्या कर सकते, मुझे नहीं मालूम और कोई तरीका से। चलें ठीक है, अपने यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। वाफ़ दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।